हम सबके लिए ये बड़ा खुशी का मौका है कि मधुबन प्राण प्यारे बाप दादा के घर में हम सब अपने भाग्य की झोली भरने के लिए पहुंचे हैं। और जैसे कि साकार बाबा ने यज्ञ में ये सिस्टम शुरू किया है कि जितने भी बच्चे बाबा के घर में आएंगे, बाबा के घर से याद सौगात लेकर के जाएंगे, तो आज वही याद सौगात लेने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन इससे पहले हमारे प्यारे प्यारे साकार ब्रह्मा बाबा ने बहुत कम समय में अपनी संपन्नता को प्राप्त किया। इतनी तीव्र लगन और अथक पुरुषार्थ से साकार बाबा ने अपने आप को कर्मातीत बनाया। ऐसे हम सबके आगे जो मिसाल बने हमारे प्यारे प्यारे ब्रह्मा बाबा के अंग संग जिन्होंने काफी समय बिताया है, ऐसी बाबा की प्यार और पालना में पली हुई आदरणीय प्रभा बहन जी हम सबके बीच हैं। हम एक हाथ की ताली से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आदरणीय प्रभा बहन जी लगभग 52 इयर्स से बाबा की गोद में आई हैं और तब से ईश्वरीय सेवा में अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। गुजरात के भरूच सब जोन को आप सुचारू रूप से मार्गदर्शन दे रही हैं। आपकी एक विशेषता जिसको मैंने बहुत करीब से देखा है, ज्ञान सुनाना ये तो हम बाबा के बच्चों का कर्तव्य ही है, लेकिन पालना की जो विशेषता आप में देखी है वो अनमैचेबल और अनकम्पेरेबल है। हर प्रकार की पालना, चाहे स्थूल भोजन की पालना हो, इसमें भी आपकी बहुत बड़ी विशेषता है। चाहे सूक्ष्म पालना हो, हर प्रकार से पालना के सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी रही है। साथ ही हमारी जो विंग्स बनी है, इसमें एजुकेशन विंग में आप जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। मैं आदरणीय प्रभा बहन जी से नम्र अनुरोध करती हूँ कि वे आज साकार बाबा के अंग संग बिताए हुए अपने उन अमूल्य क्षणों को हम सबके आगे ताजा करें। कैसे बाबा एक मिसाल के रूप में कार्य करते रहे, खुद किया, बच्चों से कराया और बच्चों को सिखाया, ये बाबा के जीवन के ऐसे अनमोल मिसालों को हम सबके आगे रखे। आदरणीय प्रभा बहन जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। संगम के सुहावनी समय पर हम सभी बाबा के प्यारे बच्चों को बाबा ने अपना बना करके महान बना दिया है। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठे थे, गीत बज रहा था, हर पल पल सुहावनी। तो हम सबका हर पल सुहावना बाबा ने बना दिया है। आज हर एक बच्चा ये अपने अंदर महसूस करते हैं कि हम बाबा के जब से बने हैं तब से हमारा जीवन सुहावना बना है और जीवन के अंदर जो भी तन मन धन समय संकल्प श्वास बाबा ने हमारा सुहावना बना दिया है। हम सबकी जीवन पहले क्या थी और आज हम सभी अपने जीवन को महसूस करते हैं कि हमारी जीवन बाबा ने कितनी श्रेष्ठ बनाई है। संगम की जीवन को हीरे तुल्य गाया हुआ है। चारों युगों के अंदर हीरे तुल्य जीवन इस समय है। बाबा कई बार मुरलियों में कहते बच्चे हीरे की वैल्यू सबसे ज्यादा है, सोने से भी ज्यादा हीरे की वैल्यू है। कलयुग में हम कौड़ी तुल्य थे और बाबा ने कौड़ी से हीरा बना दिया और हीरे भी वैल्यूबल हीरे, जिस हीरे के अंदर कोई भी फ्लो न हो, कोई भी दाग न हो, बाबा हम बच्चों को बेदाग हीरा बना रहा है। बेदाग हीरे की ही वैल्यू होती है। अगर हीरे के अंदर कहीं दाग होगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो बाबा हम बच्चों को बेदाग हीरा बना रहा है। जब हीरा बनाते हैं तो उस समय क्या करते हैं आप सभी जानते होंगे कि उसको घिस घिस के घिस घिस के एकदम फर्स्ट क्लास हीरा बना देते हैं। और बाबा भी हम बच्चों को क्या कर रहा है, फर्स्ट क्लास बेदाग हीरा बना रहा है। बनाने वाला शिव बाबा है, लेकिन शिव बाबा ने भी हम बच्चों को हीरा बनाने के लिए जो अपना रथ लिया वो रथ भी क्या था, जवाहरी था, हीरे का व्यापारी था। तो जो हीरे का व्यापारी होता है उस व्यापारी को हीरे की क्या होती है, परख होती है कि ये हीरा कौन सा है। तो बाबा ने भी हम आत्मा रूपी हीरे को क्या किया है, परख लिया है कि ये मेरे हीरे या ये मेरे बच्चे बहुत अमूल्य रत्न है। आप सभी अपने जीवन में इस बात की खुशी और नशा भी होगा कि हम बाबा के वैल्यूबल हीरे हैं, हम आत्माओं की विशेषता है। ऐसे आत्माओं में तो अनेक विशेषताएं होती हैं, लेकिन संसार के अंदर कितने भी महान और श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, अनेक विशेषताओं से भरे हुए होते हैं, लेकिन उनके पास एक विशेषता नहीं है। वो कौन सी विशेषता? कि भगवान को जानने की, बाप को पहचानने की विशेषता नहीं है। और हम सब बाबा के बच्चों के अंदर ये इतनी बड़ी विशेषता है कि हम सब ने बाप को पहचान लिया। जिस बाप को संसार ढूंढ रहा है, उस बाप को हम सब ने क्या किया है? पहचान लिया। यहां जो भी बैठे हैं सभी बाप को जानने वाले हैं। जानने वाले ही नहीं है, लेकिन साथ साथ जानकर और उसकी पालना में पल रहे कि भगवान स्वयं हम आत्माओं की कैसे पालना करता है। भक्ति में हम सब ने भगवान के लिए गाया कि तुम ही माता पिता बंधु सखा सब हो, गाया, लेकिन अनुभव नहीं किया। गाया तो सही, माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, साजन है, सब संबंध है, लेकिन उन संबंधों का कभी अनुभव नहीं किया। और आज बाबा हम बच्चों को सर्व संबंधों से हम बच्चों की बाबा पालना कर रहा है। सर्व संबंधों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम आत्माएं शरीरधारी हैं इस समय, तो शरीर के साथ सर्व संबंध लगते हैं। तो सर्व संबंध पालना परमात्मा इस समय हमारी कर रहा है। कैसे करेगा? शिव बाबा तो निराकार है, हाँ, शिव बाबा के लिए तो कहते हैं वो हमारा पिता है। शिव बाबा माता है? माता है? है? है माता? है? शिव बाबा के लिए तो पिता कहा जाता है, लेकिन माता का संबंध कब आता है? जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आता है, तब उसको मात पिता कहा जाता है। अकेले शिव बाबा को मात पिता नहीं कहा जाता है, जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तब शिव बाबा मात पिता स्वरूप में है, और तब ही बाबा हमारी पालना भी करते हैं। देखो, भक्ति में हम सभी भगवान को याद करते थे ना, कौन नहीं करता था? करते थे, लेकिन उस समय संबंधों का अनुभव नहीं होता था। गा तो लेते थे कि माता पिता है वो बंधु हो, लेकिन कभी माता पिता की भावना आती थी कि भगवान हमारी मात पिता रूप में पालना कर रहा है। लेकिन अब जब हम बाबा के बच्चे बने हैं, तो बाबा के बच्चे बनने के बाद हमको ये अनुभव होता है हर संबंध का, कि वो माता पिता साजन, हाँ, दोस्त, जिस भी संबंध की आवश्यकता है उस संबंध का अनुभव बाबा कराते हैं। तो वो संबंध का अनुभव बाबा कब कराते? जब बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं। तो ब्रह्मा के तन से बाबा ने हम आत्माओं की बहुत पालना की। आज संसार में हम तो यही कहेंगे, क्योंकि मैंने तो बाबा को साकार में देखा, ऐसा व्यक्ति संसार में कोई दिखाई नहीं दिया। आप सभी भी बाबा का फोटो देखते हैं तो बाबा के फोटो में आप सभी देखते होंगे कि ऐसा व्यक्ति कोई दिखाई दिया? एक ही है वो, और एक ही रहेगा, क्योंकि बाबा ने ब्रह्मा का रथ लिया। एक ही रथ है ना बाबा का, ब्रह्मा बाप का रथ लेकर हम सब की पालना की। और बाबा ने ब्रह्मा का रथ ही क्यों लिया? कई बार कईयों का प्रश्न आता है ना कि ब्रह्मा का ही रथ क्यों लिया। अब उस रथ की कुछ तो विशेषताएं होंगी ना, जैसे कहा ना कि ब्रह्मा बाप बेमिसाल थे। उनके मिसाल हम कितने गिनती करें, जैसे भगवान की महिमा गाते अपरम अपार है, ऐसे ब्रह्मा बाप की महिमा भी अपरम अपार है। कि ब्रह्मा बाप ने कैसे बाबा को अपना तन देकर, और बाबा ने जो बाबा को जिम्मेवारी दी, और वो जिम्मेवारी बाबा ने कैसे उठाई, वो हम सबके आगे एक एग्जाम्पल है। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे बाप समान बनो है? दूसरा बाबा कहते हैं फॉलो फादर करो है? बाप समान, बाबा के समान कैसे बने, क्या बाबा के अंदर विशेषताएं थी? सबसे बड़ी विशेषता बाबा की थी कि शिव बाबा ने जो बाबा को डायरेक्शन दिया उसको बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। डायरेक्शन कैसे दिया बाबा ने? बाबा ने बाबा को साक्षात्कार कराया। हम लोगों को तो बाबा मुरली के अंदर डायरेक्शन देते हैं, समझाते हैं हर बात, और हम बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। लेकिन बाबा को तो बाबा ने सब साक्षात्कार कराया। पहले बाबा ने साक्षात्कार कराया कि बच्चे तुमको ये सतयुगी दुनिया बनानी है, तो बाबा ने क्या संकल्प लिया कि बाबा ने मुझे कहा बच्चे तुम्हें ये सतयुगी दुनिया बनानी है। अब सतयुगी दुनिया कैसे बनानी है वो तो बाबा ने नहीं बताया, धीरे धीरे बाबा ने वो राज भी खोले। तो सतयुगी दुनिया बनाने के लिए, और सतयुग में फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम ही नारायण बनने वाले, तो बाबा ने ये साक्षात कराया कि कि नारायण तुम बनने वाले हो, तो अब नारायण की विशेषता क्या है? तो बाबा ने साक्षात्कार करके जैसे जैसे बाबा ने कहा वैसे वैसे बाबा ने उस श्रीमत का पालन किया। बाबा ने कहा बच्चे तेरे को ये दुनिया बनानी है, तो उसके लिए बाबा ने अपना लौकिक जो बिजनेस था उसको क्या किया, स्टॉप किया कि दुनिया बनानी है, उस कार्य को करने के लिए समय संकल्प संपत्ति सब लगानी। तो बाबा ने जैसे बाबा ने कहा वैसे बाबा ने क्या किया, लगा दिया। हम पढ़ते हैं ना कि बाबा ने कैसे अपना जो भी था वो अपने जो व्यापार में बाबा के भागीदार था उसको देकर सौंप कर और बाबा की सेवा में लग गया। बाबा को एक ही संकल्प, ये कौड़ियों के पीछे अपना समय नहीं, अब मुझे हीरों का व्यापार करना है, सच्चा हीरा बनना है। तो बाबा ने हीरों का व्यापार करने, वैसे तो हीरों का ही व्यापार ही था, लेकिन बाबा ने कहा ये हीरे झूठे हैं, मुझे सच्चे हीरे तैयार करने। तो आज बाबा ने कितने हीरे तैयार किए, हम सभी क्या हैं, हीरे हैं ना। कितने बाबा ने अपने बच्चों को तैयार किया है। तो हीरों का व्यापार करना, सच्चे हीरे बनाने, तो बाबा ने पहले ही अपना सब समेटने की शक्ति बाबा की आई समेट लिया। बाबा के अंदर एक विशेषता सबसे बड़ी ये थी कि बाबा निश्चय बुद्धि थे। जो बाबा ने कहा उसके ऊपर बाबा को बहुत विश्वास और निश्चय था, और बाबा के अंदर निश्चय के साथ साथ बाबा को नशा भी बहुत था। आज हमने प्रैक्टिकल में बाबा का नशा देखा। बाबा हमेशा कहते थे कि मैं नारायण बनूंगा। ऐसे तो बाबा ने हम सबको भी कह दिया है कि बच्चे तुम सभी देवता बनने वाले हो, है ना? कहा है ना बाबा ने, लक्ष्य क्या दिया है बाबा ने हम सबको, देवता बनने का लक्ष्य दिया। आज हम सब सुनाते भी हैं कि भाई लक्ष्य क्या है, लक्ष्मी नारायण बनना है। बाबा मुरली में पूछता है तो भी हम क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कोई राम सीता बनने के लिए तैयार है? सब क्या लक्ष्य कहते हैं, लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण बनना है, ये हमें स्मृति है, लेकिन हर पल स्मृति नहीं। सिर्फ पूछा जाता है ना कि भाई क्या बनना है, क्या लक्ष्य है, तो उस समय स्मृति आती है कि भाई लक्ष्मी नारायण बनना है, लेकिन बाबा को ये नशा था सदैव, हर पल हर एक्टिविटी में बाबा को ये स्मृति, उठते बैठते खाते पीते चलते बाबा को ये स्मृति थी कि मुझे नारायण बनना। आप सभी ने पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल तो देखा होगा, वहां पर बाबा ने लक्ष्मी नारायण का फोटो रखा है ट्रांसलाइट का, और साथ में वहां कृष्ण का भी फोटो है। तो जब बाबा की मुरली चलती थी तो बाबा हमेशा मुरली में इशारा करते थे कि बच्चे में ये बनने वाला, हमेशा बाबा को ये स्मृति रहती थी कि मैं ये बनने वाला। तो जो स्मृति रहती है वो स्मृति क्या करती है? कोई भी बात की स्मृति रहती है तो स्मृति हमें वो कर्म करना सिखाती है। बाबा को स्मृति, मेरे को नारायण बनना है, मैं ये बनने वाला हूं, स्मृति थी। और उस स्मृति के कारण बाबा का जो भी कर्म चलता था वो कैसा चलता था? नारायण जैसा। नारायण तो सत्युग में बनेगा ना बाबा, लेकिन हमने तो बाबा को संगम पर ही नारायण देखा। जो नारायण की विशेषता, जो दिव्य गुण थे, वो दिव्य गुण बाबा के हरेक गुण एक, तो वो गुण कैसे आए बाबा का? कि बाबा को सदैव ये स्मृति रहती थी कि मैं ये बनने, और नशा रहता था। देखो आप कभी मुरली में सुनते होंगे बाबा की, तो बाबा हमेशा कहते, बच्चे सत्युग में गोल्डन स्पून माउथ होगा। स्मृति लाता था ना बाबा, क्या होगा सत्युग में, कैसे रहेंगे सत्युग में, कैसे चलेंगे सत्युग में, वो विजन बाबा के सामने सदा था और सदा स्मृति थी। और वो स्मृति बाबा हम बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाया कि हम बच्चों को भी सदा क्या स्मृति रहे, कि हम ऐसे बनने वाले। तो जब स्मृति रहेगी तो वो कर्म में नशा भी रहेगा। तो स्मृति नशा पैदा करती है और नशा पुरुषार्थ कराती है। जितना नशा होगा ना उतना हमारा पुरुषार्थ चलेगा, और पुरुषार्थ भी सहज चलेगा। क्योंकि जहां कमाई होती है उस कमाई में पुरुषार्थ में मेहनत नहीं लगती है, और अगर कमाई नहीं होती है तो पुरुषार्थ बहुत मुश्किल लगता है। जैसे कहते हैं ना, कोई व्यापारी होता है, अगर व्यापार में व्यापार चल रहा है, ग्राहक आ रहा है, तो नींद भी फिट जाती है, खाना पीना सब भूल जाता है, क्यों कमाई है ना। ऐसे हम बच्चों को भी सदैव, हमारी कमाई है ये स्मृति है, तो हमारा पुरुषार्थ मुश्किल नहीं होगा। तो बाबा ने हम बच्चों को ये प्रैक्टिकल में करके बताया, एक एक कार्य बाबा ने करके बताया, छोटी छोटी बात भी बाबा हमको करके बताते थे, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को तैयार किया। एक बार की बात मुझे याद आती है कि पांडव भवन के अंदर एक बार भूरी दादी हमारी पहले थी, जो सब्जी लाया करती थी। तो एक बार सब्जी लेट आई, आज की तरह ट्रक वगैरह नहीं थे पहले, पहले तो बस में ही ले आते थे सब्जी वगैरह। तो सब्जी लेट हो गई, बस लेट हो गई, तो लेट हो गई, तो भूरी दादी बाबा के पास गई, बाबा आज सब्जी लेट हो गई, और सभी भाई बहनें तो भोजन करके चले गए आराम करने के लिए, अब सब्जी कौन काटेगा? सब्जी के अंदर धनिया पालक जो भी था तो वो तो खराब हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची ऐसा है, चलो बाबा चलता है। और बाबा बस साथ में आए और जहाँ सब्जी काटते थे वहाँ पर जा करके बैठे। तो बाबा के साथ दो तीन बहनें थी, वो सब गई और बाबा वहाँ जाके बैठे तो सारे पांडव भवन में हो गए, बाबा सब्जी डिपार्टमेंट में गया है, बाबा सब्जी डिपार्टमेंट में गया है, किसको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि चलो है? बाबा वहां पहुंचा तो जहां बाबा होगा वहां बच्चे नहीं होंगे है? क्या होगा, बच्चे होंगे ना। आज दादी यहां आ जाए तो आप सब कहां जाएंगे, यहीं पहुंचेंगे ना, प्रैक्टिकल में तो यहीं पहुंचेंगे ना। तो बाबा ने माना कर्म करके दिखाया, एक एक बात बाबा सिखाता था। तो बाबा जैसे ही पहुंचा और सब पहुंच गए। तो प्रैक्टिकल में बाबा कभी भी कहता नहीं था ये करो, लेकिन बाबा ने हमेशा हमारे सामने करके दिखाया। और बाबा हमेशा बच्चों का ना उमंग उत्साह बहुत बढ़ाते थे, ये बाबा की विशेषता थी। कोई भी कार्य होगा बच्चे 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 कह करके अब बच्चे बच्चे कहेंगे तो बच्चे क्या होंगे है? क्या होंगे, भूलेंगे ना बच्चे है? तो बाबा हमेशा बच्चे बच्चे कह करके हर एक बच्चे का उमंग उत्साह बढ़ाता था। और हर बात की बाबा स्मृति दिलाता। दूसरा एक मिसाल मैं बताती हूँ कि जब बाबा साकार में थे, हम बाबा के पास रहते थे, तो मुझे बाबा का भोजन बनाने की ड्यूटी मिली थी। बाबा का भोजन बनाकर बाबा को खिलाने की ड्यूटी थी। तो जब हम भोजन बनाती थी तो बाबा जहाँ हम खाना बनाते थे ना वहां बाबा आते थे और आकर मेरे से पूछते थे, बच्ची किसका भोजन बना रही, तो हमें क्या जवाब देना। स्मृति बाबा दिलाता है, बच्ची किसका भोजन बना रही, तो हम भी बाबा को बोलते हैं, बाबा शिव बाबा के रथ के लिए मैं भोजन बना रही। शिव बाबा तो उपभोक्ता है, भोजन तो शिव बाबा के रथ के लिए बना रही हूँ ना। तो बाबा हमेशा स्मृति दिलाता था कि बच्चे तुम जो कर्म कर रहे हो उसमें बाबा की याद कितनी है। और बाबा की याद है तब तो हम कर्म योगी बनेंगे ना, क्योंकि हमारा है कर्म योग। हम सब सुनाते हैं ना भाई कर्म योग है, कर्म करते उठते बैठते चलते फिरते बाबा की याद रहे, कैसे रहेगी। जब वो स्मृति आएगी, स्मृति दिलाई, बच्ची किसके लिए बना रही हूं, तो बुद्धि में आया बाबा के लिए बना रहे, तो कौन याद रहेगा, बाबा ही याद रहेगा ना। आज देखो हमारी माताएं भोजन बनाती हैं, बुद्धि में क्या रहता है, फलाने के लिए बना रहे हैं, तो याद रहता है ना है? तो बाबा के लिए बना रहे। अभी तो माताएं बाबा के लिए बनाती है ना, अपने घर वालों के लिए बनाती है, बाबा के लिए बना, बाबा को भोग लगाएंगे, बाबा के लिए बनाएंगे और बाबा का भोग परिवार को खिलाएंगी, तो क्या हो जाएगा है? भोजन से वो आत्माएं तृप्त हो जाएंगी ना? तो बाबा ने एक एक बात पर अटेंशन दिलाया और बहुत बाबा उमंग उत्साह मिलाते थे। कभी भी बाबा के पास जाओ कोई ना कोई बात बाबा जरूर सुनाते थे, याद दिलाते थे। जैसे अभी हम सभी दादी जानकी के पास जाते हैं या गुलजार दादी के पास जाते हैं तो दादियां क्या सुनाती है, ज्ञान की और बाबा की बातें सुनाती, और कोई पूछती है, बाबा के वर्षंश ही सुनाते। इतना दिल के अंदर उमंग उत्साह है कि हम बाबा की बातों को सुनाएं। तो वो अनुभव हम करें और हम अपने जो अनुभव है उनको औरों को शेयर करें। तो बाबा ने प्रैक्टिकल अपने जीवन में करके हम बच्चों से कराया, जो हम सभी आज कर रहे, इतने बाबा ने हम सबको एग्जाम्पल तैयार किए। वो कैसे बने हम सभी, बाबा ने हम सबको प्रैक्टिकल खुद भी किया और साथ में अपने ऐसे हैंड्स तैयार करे और उनके द्वारा भी बाबा आज हम सबकी पालना कर रहा है। तो ब्रह्मा बाबा की विशेषता, एक तो उन्हें सदा नशा और उमंग उत्साह है। जहां उमंग उत्साह होता है ना, वहां हर कार्य सहज हो जाता है। और अगर उमंग उत्साह नहीं होता है तो कार्य करना भी क्या हो जाता है, मुश्किल होता है। अगर जीवन में उमंग उत्साह है तो सफलता है, अगर उमंग उत्साह नहीं है तो सफलता नहीं मिले। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि बच्चे, अगर उमंग उत्साह आपके पास है तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, धूल भी सोना बन जाएगा, और जीवन में उमंग उत्साह नहीं है तो कितना भी सहज कार्य होगा ना वो भी मुश्किल है। तो जीवन में से कभी भी उमंग उत्साह को कमजोर नहीं करना है। जैसे बाबा को सदा उमंग था, मुझे ये कार्य करना है, जिम्मेवारी ली हुई थी ना बाबा ने, शिव बाबा ने जिम्मेवारी दी तो बाबा ने वो जिम्मेवारी उठाई। तो जिम्मेवार एक ही आत्मा तो नहीं थी ना, जिम्मेवार तो हम सब भी बाबा के बच्चे हैं ना कि नहीं है, हम सभी ने जिम्मेवारी उठाई है। बाबा कहता है ना कि सत्युग में तुम सब आत्माएं डबल ताज धारी बनेंगे। तो डबल ताज कौन सा है, एक पवित्रता का ताज है और एक है रतन जड़ित ताज। तो रतन जड़ित ताज किस आधार से मिलेगा, रतन जड़ित ताज जो मिलेगा वो संगम युग के ऊपर जितना हम स्वयं की और बाबा के यज्ञ की, बाबा की सेवा की जिम्मेवारियां उठा के चलेंगे उतना हमें वो ताज मिलेगा। तो बाबा ने हम बच्चों को जिम्मेवार आत्मा बनाया, और जो अपने को जिम्मेवार समझता है वो क्या होगा, जो जिम्मेवारी होती है जिसके ऊपर, उसके अंदर क्या विशेषता होती है, उसके जीवन में आलस और अलबेलापन नहीं होता है। और जो जिम्मेवार नहीं होते हैं उनको क्या होता है, आलस और अलबेलापन। तो जिम्मेवार हम हैं। जैसे बाबा ने अपनी जिम्मेवारी उठाई कि मुझे सत्युगी दुनिया बनानी है, तो बाबा के जीवन में कभी कभी आलस ही नहीं। आलस क्या है कभी देखा नहीं। बाबा की जो दिनचर्या थी वो दिनचर्या बिल्कुल एक्यूरेट दिनचर्या थी, जरा भी इधर से उधर बाबा की दिनचर्या नहीं होती। अमृत वेला उठना है, क्लास में आना है, टाइम पर बाबा ने मुरली सुनानी है, हा? बाबा को हमेशा एक ही लक्ष्य रहता था कि बच्चे मैं मुरली नहीं सुनाऊंगी तो बच्चे इंतजार करेंगे कि बाबा की मुरली आएंगी। तो जिम्मेवारी उठाई ना, तो जिम्मेवारी क्या करती है, आलस और अलबेलेपन को
खत्म कर देती है।
तो बाबा के जीवन में ये बात थी, वो अपने को स्वयं जिम्मेवार समझते थे। तो हम सभी भी क्या हैं? जिम्मेवार आत्मा है या नहीं? आज हम सभी कह तो देते हैं स्वर्ग की दुनिया मैं बनाऊंगा, आज पूछो स्वर्ग कौन लाएगा तो क्या कहेंगे? हम लाएंगे। तो सदैव याद रहता है स्वर्ग हम लाएंगे। अगर याद रहे कि स्वर्ग की दुनिया मुझे ही बनानी है, नई दुनिया मुझे ही बनानी है, ये कार्य मुझे ही करना है, तो जीवन के अंदर क्या होगा? आलस और अलबेलापन नहीं होगा। तो बाबा के जीवन के अंदर कभी भी हमने अलबेलापन नहीं देखा। और बाबा के साथ आज हम प्रैक्टिकल में देखते हैं हमारी दादियों को, दादियों के जीवन में है, देखो हमारी दादी कितनी एज है लेकिन फिर भी कितनी अलर्ट है। तो कैसे बनी? बाबा ने जिम्मेवार बनाया और हरेक ने अपनी जिम्मेवारी से, मेरी जिम्मेवारी है मुझे बाबा के बच्चों को भरपूर करना है। तो बाबा को भी जिम्मेवारी थी और बाबा की हमारी दादियों को भी ये जिम्मेवारी, मुझे भरपूर करना है। तो जब ये जिम्मेवारी है तो जीवन में आलस और अलबेलापन नहीं आएगा। तो हमारी भी जिम्मेवारी है कि हमें क्या करना है, बाबा के पूरे पूरे मददगार बनना है। जैसे बाबा बना ऐसे हमको भी क्या करना है, हम कहते हैं ना बाप समान बनना है, तो समानता किस में लानी है? जो बाबा ने प्रैक्टिकल इस धरा पर कर्म करके बाबा ने हमें सिखाया, उस कर्म को हमें प्रैक्टिकल करके दिखाना है, बाबा के हाथ में हाथ देकर चलना है, साथ में साथ देकर के चलना है, तो हम बाबा के क्या है? बच्चे। हम बच्चे तो कह देते कि भाई हम शिव बाबा के बच्चे हैं, तो बच्चों का कर्म क्या है? बच्चे क्या करते हैं? फॉलो करते। तो हमें भी बाप को फॉलो कर बाबा के हाथ में हाथ दे करके चलना है, और हाथ में हाथ देकर चलेंगे तो हमारे जीवन के अंदर बहुत कुछ प्राप्ति होंगी, हमारा जीवन का मार्ग सहज हो जाएगा। जब बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, हाथ किसने पकड़ा है? स्वयं सर्वशक्तिवान सर्व समर्थ बाप से मेरा हाथ पकड़ा है। तो जब बाबा का हाथ पकड़ करके हम चल रहे हैं तो हमारा जीवन क्या रहेगा, कैसा रहेगा? इतना सरल और सहज जीवन बन जाए। जब हम साथ छोड़ते हैं ना तब फिर क्या होता है, तब परेशान होते हैं। तो कभी भी बाबा का साथ, बाबा का साथ लेकर, हाथ में हाथ लेकर के हम चलेंगे तो हमारा जीवन बहुत सहज और स्मूथ बन जाएगा। आज थोड़ा सा भी मुश्किल लगता है तो क्या होता है, मुश्किल क्यों आता है? कि बाबा का साथ छूट जाता है, और साथ है तो कोई चिंता कोई फिक्र नहीं। भक्ति में भी गीत गाते थे, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, गाया ना सभी ने। तो हमारा साथी कौन है, कौन है? सर्वशक्तिवान सर्व समर्थ साथी है। और हम कौन है, कौन सा स्वमान सदा स्फूर्ति में रखना है? हम मास्टर सर्वशक्ति। जब ये स्मृति आ जाएगी, स्मृति रहेगी, तो हमें कभी भी कोई भी प्रकार की मुश्किलात नहीं आएगी। तो बाबा के जीवन से हम सबने ये प्रैक्टिकल देखा कि जो बाबा की एक एक बात की बाबा को सदा स्मृति रहती थी, ऐसे हम बच्चों को भी बाबा की एक एक बात को सदा स्मृति में रखेंगे तो कभी भी पुरुषार्थ हमारा क्या मुश्किल नहीं होगा। स्मृति भूलते हैं, बातें भूलते हैं तो फिर मुश्किल लगता है, फिर कहते ये माया आई, वो माया आई, ये पेपर आया, वो पेपर आया। पेपर तो आएंगे हैं, लेकिन पेपर से पार करने वाला कौन है? इस संसार सागर के अंदर हम सबकी जीवन नैया की डोरी किसके हाथ में है? बाबा के हाथ में है ना, पतवार उसके हाथ में है ना, तो हमको क्या करेगा? पार लगा देगा। लेकिन कब लगाएगा? जब उसके हवाले करेंगे। अगर हवाले ही नहीं करेंगे तो लगाएगा? हवाले करेंगे तो लगा देगा। बाबा का हाथ पकड़ के चलेंगे तो पार हो जाएंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो क्या होगा? हाथ छूटेगा तो फिर डूब जाएंगे। इसलिए कभी भी बाबा का हाथ नहीं छोड़ना, सदैव हाथ में हाथ देकर ये अनुभव करो कि बाबा मेरे साथ है। करते हैं सभी अनुभव कि बाबा मेरे साथ है? हाँ, वो गीत तो गा लेते हो, बाबा मेरे साथ है डरने की क्या बात है, गाते हो ना? तो डरते हैं, फिर तो साथ छूट जाता है तो फिर डरते हैं। तो ये सदैव स्मृति रहे, बाबा मेरे साथ है, मेरा साथी कौन है, बस इतनी ही स्मृति हमें पुरुषार्थ कराते हैं। मेरा साथी कौन है, हम किसके बच्चे हैं, मेरा बाबा कौन? तो सदैव क्या साथ स्मृति रखेंगे? बाबा मेरे साथ है और मैं बाबा के साथ हूँ। बाबा के हाथ में हाथ दे करके हम चलेंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। ओम शांति।